स्वामी जी महाराज सत्संग प्रेमियों, पूज्य स्वामी जी ने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से हमारे लिए भरत चरित्र का अमृतपान पिलाने के लिए समय निकाला है। इसके लिए हम सब आपके अत्यंत आभारी हैं। गत वर्ष हनुमान जी का चरित्र सुनकर हम सब कृतकृत्य हुए थे। नूतन वर्ष में भी आप हमारे बीच जरूर पधारें, यह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप सबको मैं अनेक धन्यवाद देती हूँ एवं पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ और उन्हें प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना प्रवचन आरंभ करें।
भाई बसंत कुमार जी, रमनलाल जी, बिनानी देवियों और सज्जन, भगवान की अनुकंपा से इस बार पुनः यह योग बना है कि आपके बीच उपस्थित होकर रामचरित मानस के माध्यम से उनके गुणों की कुछ चर्चा की जाए। वैसे विचार के लिए श्री भरत का चरित्र लिया गया है, पर भरत के गुणों का गायन भगवान के ही गुणों का गायन है और इसीलिए श्री भरत के गुणों का कीर्तन करते हुए वस्तुतः हम श्री राघवेंद्र की ही महिमा का गान करेंगे। तो आइए रामचरित मानस पर प्रवचन की परंपरा का निर्वाह करते हुए कुछ देर भगवन नाम संकीर्तन कर लें।
श्री राम, जय जय राम। 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 श्री राम, जय जय राम।
श्री भरत का चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने भी अत्यंत सुंदर रीति से चित्रित किया है। पर जिन रंगों का उपयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है उनके चरित्र का अंकन करने के लिए वे अनुपम है और उनकी किसी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। यदि रामचरितमानस में ऐसे कोई पात्र हैं जिनसे सबसे अधिक सामीप्य का अनुभव गोस्वामी तुलसीदास करते हैं तो वे हैं श्री भरत। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में जो आकांक्षाएं हैं धर्म के क्षेत्र की, जो आदर्श हैं आध्यात्मिकता के, वे सभी के सभी श्री भरत में मूर्तिमान दिखाई देते हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे श्री राम के निकट पहुंचा दे सकता है तो वे श्री भरत हैं। अयोध्या कांड के अंत में, अयोध्या कांड आप जानते हैं श्री भरत के चरित्र का ही प्रकटन है और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जिन शब्दों में श्री भरत के चरित्र का वर्णन करते हैं वे बड़े ही मार्मिक हैं और ऐसा लगता है कि अपना हृदय ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उड़ेल दिया है। ऐसी वंदना जो हृदय को छू लेने वाली हो और किसी की उन्होंने नहीं की है। इतनी आत्मीयता और किसी पात्र के प्रति उन्होंने प्रदर्शित नहीं की है जितनी उन्होंने श्री भरत के प्रति की है। आप पढ़ते हैं अयोध्या कांड के अंत अंत में जहां पर वे कह रहे हैं
सिंह राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म नो भरत को मुनि मन अगम जम नियम समुदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनि हठि राम सनमुख करत को।
वे कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन्मन भरत को, यदि भरत का जन्म न हुआ होता ये भरत कैसे हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण, सीता राम के प्रति प्रेम के अमृत से भरे हुए हैं, ऐसे श्री भरत का यदि जन्म न हुआ होता तो मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, जो ऐसे दुस्साध्य साधन हैं, यम नियम हैं, जिनका आचरण मुनि भी बड़ी कठिनता से कर पाते हैं, तो कौन अपने जीवन में इन साधनों को करके प्रदर्शित करता कि ये साधन साध्य हैं। यदि श्री भरत न हुए होते तब तो यही लगता कि इन साधनों को कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। इतना संयम, इतना यम और नियम का पालन और विषम व्रतों का आचरण उनके लिए ही संभव था। और इस प्रकार वे यह बता करके जाते हैं कि मनुष्य इन साधनाओं को कर ले सकता है। और फिर वे कहते हैं दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, मानो अपने यश के बहाने वे किन बातों को दूर करते हैं यह वे बता देते हैं। दुखों को दूर करते हैं, दारिद्र्य को दूर करते हैं, दंभ को दूर करते हैं। सबसे बड़ा तो मनुष्य का दंभ है, जिसके कारण वह भगवान के पास पहुंच नहीं पाता है। और भरत का चरित्र ऐसा है जहां दंभ शून्यता है। किसी भी प्रकार से हम श्री भरत के चरित्र को देखें, कहीं पर कोई अभिमान की रेखा तक खींची दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारे गुण तो श्री भरत में है ही, पर जो सबसे बड़ा गुण वे मानते हैं वह यह है कि यदि श्री भरत न हुए होते तो तुलसी के समान 60 लोगों को भगवान श्री राम के उन्मुख कौन बनाता था। यह तो उन्हीं का कर्तृत्व था कि तुलसी जैसा 60 भी भगवान की ओर जा सका। यह गोस्वामी जी की अपनी विनय है, पर इस विनय के माध्यम से वे श्री भरत के कर्तृत्व का यहां पर कीर्तन करते हैं। वे यह बताते हैं कि यदि श्री भरत नहीं हुए होते तो शायद तुलसी नहीं जा सकता था, या तुलसी का मन भगवान श्री राम के चरणों में नहीं जाकर के एकाग्र हो सकता था। यह बात वे कहते हुए अघाते नहीं। यह पहली स्थापना है। और दूसरी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी की यह है कि यह जो भगवान श्री राम हैं, उनके चरित्र का, उनके गुणों के गायन और श्रवण का जो फल होता है वह श्री भरत के गुणों के श्रवण मात्र से सध जाता है। यह एक सूक्ष्म अंतर है जो गोस्वामी जी स्थान स्थान पर व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राम की महिमा के लिए गायन और श्रवण, ये दोनों बातें उन्होंने रखी, पर भैया भरत के लिए उन्होंने केवल श्रवण ही कहा। श्रवण ही पर्याप्त है, उसके लिए गायन की आवश्यकता नहीं है। तो हम उनके उन छंदों को देखेंगे जहां पर उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है, दोहों में, छंदों में, सोरठा में, और उसी प्रकार चौपाई के माध्यम से। तो प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर उन्होंने कुछ छंद रचे हैं, दोहे रचे हैं, जैसे बालकांड में। बालकांड के अंत में वे कहते हैं, जहां पर वे यह बता रहे हैं, सीता जी और श्री राम के विवाह की बात वे कहते हैं, जहां पर वह कहते हैं कि सीता और राम जी का जो विवाह है, जे सप्रेम गावहि सुनहि। वे कहते हैं कि जो इसको गाते हैं और सुनते हैं सप्रेम, और उनके मन में क्या होता है जो सप्रेम गाते हैं और सुनते हैं, तिन कहूं सदा उछाव मंगलायतन राम जसु। जहां पर उन्होंने कहा सिय रघुवीर विवाहु, सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गा वही सुनहि, तिन कहूं सदा उछाव मंगलायतन राम जसु। गाते और सुनते हैं। जो अयोध्या कांड है वहां पर श्री राम की बात ही नहीं गई, वह तो भरत का चरित्र के प्रकटन का कांड है। और इसीलिए वे यह कहते हैं, भरत चरित करिनेमु जे सप्रेम सादर सुनहि। यहां गाना है ही नहीं। भरत चरित करिनेमु जे सप्रेम सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। भवरस की निवृत्ति हो जाती है केवल सुनने मात्र से। या भरत के संबंध में, श्री राम के संबंध में उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब जब हम अरण्य कांड में आते हैं तो वहां पर वह प्रसंग आता है अंत अंत में, जिस समय देवर्षि नारद आते हैं श्री राम के पास। वैदेही का अपहरण हो चुका है और श्री राम और लक्ष्मण वहां पर वन में बैठे हुए हैं, विचरण कर रहे थे पत्नी की खोज करते हुए, और अभी वे बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वहां पर देवता आते हैं, मुनि आते हैं, उनसे मिल करके जाते हैं। तहपुनि सकल देव मुनि आए, अस्तुति करि निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला
कहत अनुजसन कथा रसाला।
और ठीक दूसरी ही चौपाई उसके बाद,
विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भासोच बिसेखी।
क्यों इतना अंतर में शोक क्यों उत्पन्न हो गया?
मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा।
यह बहुत विलक्षण है पद्धति गोस्वामी जी के। बैठे हैं प्रभु, अनुज सन कहत रसाला, कथा कह रहे हैं अत्यंत रसीली। वहां पर देवता आते हैं, भगवान शंकर पार्वती जी से कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि वहां पर सारे देवता आए, मुनि आए, स्तुति की, अपने धाम चले गए। और फिर वहां पर कहते हैं बैठे परम प्रसन्न कृपाला, केवल प्रसन्न ही नहीं है, परम प्रसन्न ये कृपालु भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। कहत अनुज सन कथा रसाला, अत्यंत रसीली कथा कह रहे हैं। और नारद जी क्या देखते हैं? विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद देखते हैं कि भगवान श्री राम विरहवंत हैं, विरहाकुल हैं। अब यह तो बड़ी विलक्षण बात है कि अभी भगवान शंकर देखते हैं कि वे तो अत्यंत प्रसन्न चित्त बैठे हैं और अपने बंधु के साथ रसीली कथा कह रहे हैं। और उसी क्षण जब देवर्षि नारद देखते हैं तो भगवान अत्यंत विरहवान मालूम पड़ते हैं। यही भगवान का चमत्कार है। यह सामान्य मनुष्य तो नहीं कर सकता। कितना भी कुशल अभिनेता हो तो जिस समय हंसेगा तो हंसता हुआ ही दिखेगा, वह रोता हुआ तो नहीं दिखाई देगा। कि कितना भी कुशल अभिनेता हो कि आप देखें तो मैं हंसता हुआ दिखाई दूं और वे देखें तो मैं रोता हुआ, ऐसी कुशलता अभी तक तो कोई अभिनीत नहीं कर पाया है। पर भगवान के संबंध में यह सब सत्य है। एक को वे हंसते हुए दिखाई देते हैं, उसी क्षण दूसरा उन्हें रोता हुआ देखता है। तो नारद को ऐसा लगा कि भगवान अत्यंत विरह में हैं, और उन्हें लगा कि मैं ही इसका कारण हूं। मैंने श्राप दिया था कि तुम भी इसी प्रकार दुख के भाजन बनोगे, तो प्रभु ने मेरा श्राप स्वीकार करके यह दुख भी स्वीकार किया है। तो वे आए, चरणों पर गिर पड़े और फिर बहुत प्रकार से उनकी विनय की, क्षमा भी मांगी। फिर इसके बाद में जब प्रबोधन प्रभु करते हैं देवर्षि नारद को, तो देवर्षि नारद एक बात पूछते हैं। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपसे एक बात पूछूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके मन में मेरे प्रति कोई रोष नहीं है। प्रभु ने हंस करके कहा कि देवर्षि आपके प्रति भला मेरे मन में रोष क्यों होगा, वह तो पूरा सद्भाव ही है। तब यह तो बताइए।
तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा केहि कारण प्रभु करेन दीन्हा।
मैं उस समय विवाह करना चाहता था, आपने मुझे करने क्यों नहीं दिया, यह प्रश्न मैं जानना चाहता हूं। इसका उत्तर मैं मन में बहुत सोचने की कोशिश करता रहा पर मिला नहीं है। समझ में नहीं आया कि आपने विवाह करने से मुझे क्यों रोका। आपके तो कितने भक्त विवाहित हैं, आप स्वयं विवाहित हैं, भगवान शंकर जी को आपने विवाह के लिए प्रेरित किया जो विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु आपने ही उन्हें प्रेरित किया। और मैं विवाह करना चाहता था तो आपने करने नहीं दिया, इसके पीछे कोई कारण? तो भगवान कहते हैं हाँ एक कारण है। वह कारण क्या है?
मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी।
तुम तो जानते हो नारद, मेरे दो पुत्र होते हैं, एक तो होता है प्रौढ़ और दूसरा होता है बालक के समान। तो प्रौढ़ होता है वह जो ज्ञानी है, जो रमा हुआ है सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के विवेचन के द्वारा, विवेक के द्वारा जो ज्ञान में रमा है, जो अहर्निश उस ब्रह्म का चिंतन करता है, ये तो मेरे ज्ञानी पुत्र हैं और इनको मैं प्रौढ़ मानता हूं। और बाकी जो दूसरे हैं, जो दास हैं, अमानी हैं, जिनमें किसी प्रकार का मान अभिमान नहीं है, जो सतत अपने को दास ही मानते हैं, जैसे तुम हो, तुम अपने को दास मानते हो, मेरा भजन करते रहते हो, तुम में अभिमान नहीं है, तो ऐसे जो मेरे पुत्र हैं उनको मैं बालक मानता हूं। तो जानते हो ये बालक पुत्र और वे ज्ञानी पुत्र जो प्रौढ़ हैं, तो बात तुम समझ गए? देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु बात तो कुछ समझ में नहीं आई, आपने मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिया। तब प्रभु ने हंस करके कहा कि जो पुत्र प्रौढ़ हो जाते हैं जब वह विवाह करना चाहता है तो माता पिता उसे अनुमति देते हैं और उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देते हैं, पर बालक पुत्र छोटा सा जो है कहे कि पिताजी मेरी शादी कर दो, तो स्वाभाविक है कि छोटे से बच्चे की शादी तो कोई माता पिता करता नहीं, तो माता पिता तो उसे समझाएंगे या कहेंगे बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ, शादी करने के लायक हो जाओ तब तुम्हारी शादी कर देंगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें बालक सुत ही मानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे विवाह का कोई प्रश्न नहीं था, तुम चाहते थे तो मैंने यही सोचा कि जैसे छोटा सा बच्चा कभी कभी अपनी धुन में कह देता है कि माँ मेरी शादी कर दो, तो तुम भी वैसा ही कर रहे थे, तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था और इसीलिए मैंने विवाह नहीं किया। वह गदगद हो जाते हैं। देवर्षि नारद जब समझते हैं कि मेरे प्रति प्रभु का भाव यह है कि मैं उनका एक बालक पुत्र हूं, एक छोटा सा पुत्र जिसको अपना ख्याल नहीं करना पड़ता, जिसका ख्याल माता पिता को करना पड़ता है, वह छोटा पुत्र कौन है जो स्वयं अपने आप में स्वयं अपनी कोई चिंता नहीं करता है, उसकी चिंता तो माता पिता करते हैं। जब प्रभु ने इतनी बड़ी बात कह दी तो स्वाभाविक था देवर्षि नारद का गदगद होना। वे गायन करते हैं और फिर उसके बाद प्रभु से उपाय पूछते हैं, भक्ति का उपाय, और प्रभु वहां पर कहते हैं
गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रत सीला।
गावहि सुनहि सदा मम लीला, और फिर उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं
राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग।
जहां पर कह रहे हैं सुंदर बात वे कहते हैं कि राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, और जहां पर वे कहेंगे कि सीए राम पद, प्रेम जो भक्ति है जो भगत दृढ़ पाते कैसे हैं, बिनु विराग जप जोग, बिना विराग के बिना जप के बिना योग के भगवान की दृढ़ भक्ति वे पाते हैं, तो यह वे कहते हैं यहाँ पर अरण्य कांड में वही गावहि और सुनहि। और फिर जिस समय हम सुंदर कांड में पहुंचते हैं प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान ने आवेश में आकर के बाण चढ़ा लिया समुद्र को सोखने के लिए, पहले तो 3 दिन तक बैठे रहे याचना करते रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, और उस समय वे बाण चढ़ाते हैं और समुद्र आता है, पर आकर के उसने बड़ी विनय की, कहा कि महाराज इसमें तो मेरा भी गौरव घट जाएगा, आप किसी का गौरव घटाना नहीं चाहते हैं, तो फिर उसके बाद यह तो सुंदर कांड की बात, मैं किष्किंधा कांड की बात कह रहा था। किष्किंधा कांड में जिस समय हनुमान जी सागर को पार करेंगे और साने बानर कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं तो जा नहीं सकता, कोई कहता है मैं तो जा सकता हूं पर लौटने में शंका है, जैसा कि अंगद कहते हैं, तो वहां पर फिर जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम चुप क्यों हो, और तब हनुमान जी अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं, वे कहते हैं कि ठीक है मैं जाऊंगा, मैं लंका को पूरा उखाड़ करके ले आऊंगा, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। तब जाम्बवान वहां पर बताते हैं वह आखिरी छंद जिसको हम किष्किंधा कांड का छंद कहेंगे, वहां पर बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है।
कपिसेन संघ संघारी निश्चर राम सीतहि आनि है त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानि है।
जाम्बवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल सीता जी का पता लेकर के आ जाओ, प्रभु जाएंगे वाहनी लेकर के और वे रावण का वध करेंगे, सीता जी को ले आएंगे, तो यहाँ पर वही कहा गया। वे कह रहे हैं जाम्बवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
कपिसेन संग संघारी निश्चर राम सीतहि आनि है त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानि है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई प्रभु वीर पद पाथो जमधु कर दास तुलसी गावई।
तो यहाँ पर भी जो सुनत गावत कहत समुझत, यहाँ भी वही बात कही। और जो सुंदरकांड आता है आखिरी में, जो समुद्र की बात मैं कह रहा था, समुद्र ने हाथ जोड़ करके विनय की कि महाराज नल नील हैं, उनको आप बुला लीजिए, वे कुशल हैं इंजीनियरिंग विद्या में, शिल्प में, वे सेतु का निर्माण करना जानते हैं, वे करेंगे। और फिर उसके बाद सिंधु चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
निज भवन गमन वो सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायमु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायमु, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजु सकल आस भरोस।
जहां पर कहते तज सकल आस भरोस,
तज सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सठ मना।
यहाँ पर भी गावही सुनाई, लंका कांड आए अंत अंत में, यहाँ पर यह कहा गया,
यह राम नारी चरित पावन राम पद रति प्रद सदा विकामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावही मुदा।
गावही और सुनाई दूसरे इसमें लिखते हैं,
समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहिं सुजान।
गावहि और सुनहिं,
विजय विवेक विभूति नित तिन्हहिं देहि भगवान।
जो गावहि और सुनहिं। और उत्तरकांड में वहां पर तो कह ही रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तारभूषण जी का कहना है गरुड़ जी के प्रति,
राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही।
और फिर जहां पर कहें,
रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही।
तो सब जगह गावन और सुनाई, जहां तक श्री राम का प्रश्न है। पर जब भरत जी का प्रश्न है, केवल सुनाई, भरत चरित करी नेम जे सादर, जहां पर कहा तुलसी जे सादर सुनाई यह सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति, यह जो कहा, तो वहां पर केवल सुनने की बात है, यह दूसरी स्थापना है। तीसरी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी विलक्षण करते हैं, श्री राम का वनगमन क्यों हुआ। हम लोग तो यही मानते हैं उनका वनगमन हुआ रावण का वध करने के लिए, देवता यही सब मनाते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं कि कैकेयी की बुद्धि मारी गई, मंथरा की मति को परिवर्तित किया गया देवताओं के द्वारा, और वह जाकर के कैकेयी की बुद्धि को परिवर्तित करती है। और फिर हम यह पढ़ते हैं कि श्री राम का वनगमन होता है जिससे रावण का वध। पर गोस्वामी तुलसीदास जी इस स्थापना को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं, यदि रावण का वध ही करना प्रयोजन होता तब तो कितने लोग थे जो रावण का वध कर दे सकते थे। तो जैसे हमने एक बार संकेत देते हुए कहा था, वाली था, उसने भी तो द्वंद्व युद्ध में रावण को पराजित किया था। और हम यह पढ़ते हैं कि जिस समय द्वंद्व युद्ध में एक घूंसा लगाया वाली ने रावण पर, रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। वाली को बड़ी प्रसन्नता हुई, यह जगत प्रसिद्ध योद्धा है और इस जगत प्रसिद्ध योद्धा को मैंने मुष्टि द्वंद्व में पराजित कर दिया है। पर बाली के मन में एक संशय उठा, यदि मैं बाद में लोगों से कहूंगा कि मैंने रावण को पराजित किया तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास करने के लिए क्या किया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत देते हैं,